الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے بولنے سے پہلے کافی ہنسی آ رہی ہے فی الحال، اور جس طرح سے آپ لوگ سارے اس کونے میں ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر دیکھے گا یہ لکھا ہوا ہے بی مائی ویلنٹائن اور وہ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، آج بہت مبارک دن ہے آج تو۔ آف کورس اس ٹائم آپ کو ٹی وی کے اوپر، مارکیٹ پلیس کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں تو بہت بھری ہوئی ہیں، بیلونس بھی بہت ہیں، بیکریز نے خاص طور پہ کیکس بنائے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے، ریسٹورینٹس ہیں انہوں نے اسپیشل پیکیجز بنائے ہوئے ہیں، کپڑوں کی جو شاپس ہیں انہوں نے اس کے لیے الگ الگ ڈریسنگ بنائی ہوئی ہے اس دن کے لیے۔ خیر، ویلنٹائن نہ بھی ہو، یہ تو آئیکن جو ہوتا ہے کہ یہ جو دل بنا ہوا ہے، دل کے اندر ایک تیر کھبا ہوا ہے، یہ تو ایک بہت پرانا ایک رومانٹک وہ آئیکن ہے۔ یہ تو خیر کسی باہر کا میں نے کوئی پکچر اٹھائی ہے، اگر لوکل بنا ہوتا تو دل کے اندر تیر بھی ہے اور ساتھ خون بھی ٹپک رہا ہوتا ہے ایک دو قطرے۔ یہ ڈے جو ہے اور یہ چیزیں کہ ریڈ کلر کا ہونا، ویلنٹائن جو بھی مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب بڑا کوئی اچھا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ باقی پھر یہ کہ ہارٹ، ایرو کا سمبلز، آئیکونس جو ہیں اس کے، پھر یہ جی اس طرح کے لپ آئیکونس۔ اب یہ سوچتے کم ہیں ہم لوگ کہ وہ دل جو ہے اور یہ تیر کیوں آتا ہے، ہر کلچر کے اندر تیر کیوں ہے، یا ویلنٹائن کا مطلب کیا ہے، یا یہ جب لو کارڈز ہوتے ہیں ان میں یہ دو ننگے بچے کیوں ہوتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے لو کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی ایروز ہیں، کیا مطلب کیا اس کا، یہ کہاں سے چیز شروع ہوئی تھی۔ میں کارڈز بکوانے نہیں آیا، میں بیسکلی آئیکونس بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس ٹائپ کے سمبلز جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ورڈس کا کیا ذکر ہے اس کے اندر، کیوں آ رہے ہیں۔ اور اگین جو ہمارے، یہ تو خیر باہر گوروں کا ہے نا، تو یہ ہمیں زیادہ اسٹائلش لگے گا، جو ہمارا دیسی ہوگا وہ جیسا میں نے بتایا کہ دل ہوتا ہے، تیر لگا ہوا، خون ٹپک رہا ہوگا اور دو کبوتر بیٹھے ہوں گے، تو وہ ہمارا وہ دیسی اسٹائل ہو گیا ہمارا۔ تو یہ وہی ویلنٹائن کا جو آئیکون ہے، یہ کیا چیز کیا ہے، یہ تمام آئیکونس جو ہیں، یا یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، شروع کس طرح ہوا تھا۔ یہ الوفنس کی علامت ہے ہماری، کہ ہم لوگ جس طرح باقی بہت ساری چیزوں کے اندر، جب وہ جادو والے لیکچرز بھی تھے ان کے اندر میں نے بہت باتیں بتائی تھیں کہ کیا چیزیں جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں، اومن سمجھے جاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی۔ اسی طرح یہ ویلنٹائن ڈے اور ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیکونس ہیں، ان تمام کا مطلب کیا ہے، یہ شروع کس طرح ہوا تھا، ایگزیکٹلی یہ کیا چیز تھی، کو ہمیں بیسیکلی کیئر نہیں ہے، جیسا باقی چیزوں کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں پتہ اور ہم کیئر نہیں کرتے، اس طرح اس کے بارے میں بھی کیئر نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے گلوبلی یہ واحد ایونٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر گلوبلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایرسپیکٹو آف ریلیجیس باؤنڈریز، ریجنل باؤنڈریز، پوری دنیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ انآفیشیل جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں ان تمام کے اندر یہ موسٹ سیلیبریٹڈ ڈے ہوتا ہے، انآفیشیل۔ آفیشیل میں مے بی شاید نیو ایئر سب سے زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن انآفیشیل میں ویلنٹائن ڈے موسٹ سیلیبریٹڈ ڈے ہے۔ اب جس طرح تہوار ہو گئے، کرسمس ہو گیا، اس طرح کے جو ایونٹس ہیں، ان تمام کے اندر آف کورس وہ کرسچن کمیونٹی اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوگی، باقی دنیا تو نہیں کر رہی ہوگی سیلیبریٹ، لیکن ویلنٹائن جو ہے جسے ہمیں بتا دیا کہ ارسپیکٹو آف ریلیجن، ارسپیکٹو آف ریجن، ہر لحاظ سے اس کو گلوبلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1990s سے پہلے نہ آپ کو ہماری فلموں کے اندر اس کا ذکر ملے گا، نہ آپ کو ڈراماز کے اندر ذکر ملے گا، نہ مارکیٹنگ کے اندر کہیں ذکر ملے گا اس کے بارے میں۔ ایون انڈین موویز کے اندر بھی 1990s سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، اور ارلی 90s کے اندر بھی نہیں ملے گا، یہ مڈ 90s کے بعد اسی دوران ایک دم سے اچانک ہی اس کا ٹرینڈ ہونا شروع ہوا تھا، اور اس طرح پینیٹریٹ کرتا گیا ہے کہ اس وقت آج کے دن اب جتنے بھی اسکولز ہوں گے، جتنے بھی مومیٹیڈ اسکولز ہیں، ان سب کے اندر پراپر اس کے کارڈز بنائے جا رہے ہوں گے کہ گھر لے کے جائیں گے، اور بی مائی ویلنٹائن اس طرح کے ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے۔ مارکیٹ پلیسز جتنے بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہر دکان نے اپنے حساب سے ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اپنی پوری دکان کا ڈیکور چینج کیا ہوا انہوں نے۔ ایون میڈیکل شاپس جو ہیں انہوں نے بھی بیلونس بھی لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بیکریز ہیں انہوں نے اسپیشل کیکس بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح پنڈی کے اندر اب بڑے بڑے جو بل بورڈز ہیں، تہذیب بیکر جو پہلے راحت بیکرز تھا، یا راحت بیکری نے بھی کہیں کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے بینرز لگائے ہوئے ہیں جو پورے پورے ہفتے چل رہے ہیں، کہ پتہ نہیں کتنے 2-3 لاکھ کتنا آ گیا ہوگا ان کے اوپر خرچہ اس ایڈ کے اوپر لگانے کے لیے، جبکہ جو کیک ہوگا وہ کتنے کا بکے گا، 800-1000 روپئے کا جتنے کا بھی کیک ہوگا۔ लेकिन आप देखें कि किस कदर इन्वेस्टमेंट का उनको यकीन है कि उस एक दिन कितने ज़्यादा लोगों ने आके चीज़ें ख़रीदनी है कि ये हमारी कॉस्ट इवन हो जाएगी। जितना मुझे पता सिर्फ मैं उतना बता रहा हूँ। पीसी ने प्रॉपर इस रात के लिए अलग पैकेज बनाए हुए, एडवर्टीजमेंट भी की हुई है और पैकेज भी बनाए हुए हैं इस रात को, वैलेंटाइन पैकेज। तो ख़ास धुन छाई हुई है, बल्कि बड़ों के एतबार से या लड़के लड़कियों के एतबार से तो चले बात कुछ समझ आती भी है। इवन जो बच्चों की, जो छोटे बच्चों की शॉप्स हैं उनके अंदर भी, जो छोटी लड़कियां हैं उनके रेड कलर के ड्रेसेस आए हुए हैं और इस तरह के एड्स के, हु सेज वैलेंटाइन इज फॉर गर्ल्स ओनली, बाय रेड ड्रेसेस फॉर योर लिटिल डॉल ऑन दिस डे, इस तरह करके एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं वो। और टीवी के ऊपर अगर आप देखें तो टीवी के अंदर तो खैर क्या ही बात है, तो बहुत ही ज़्यादा आगे बात गई हुई है क्या क्या बयान करने वाली चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये जो एक पूरा एक धुंध छाई हुई है पूरे माशरे के अंदर, एक खास एज के ऊपर, मिसाल के तौर पर जो आपके पेरेंट्स की एज होगी, उनको असूलन इस दिन के ऊपर उनको होना तो बहुत सेंसिटिव चाहिए, इस दिन के ऊपर उनको होना काफ़ी सेंसिटिव चाहिए और बहुत केयरफुल होना चाहिए इन्हें इस दिन के बारे में, कि उनको पता होना चाहिए कि ये दिन जो है ये ऑफकोर्स ये मॉरली इखलाकी एतबार से ये दिन जो है, चाहे जिस मर्जी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, इस दिन को अच्छी चीज़ नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी टीवी प्रोग्राम उन तमाम चीज़ों को टॉलरेट किया जा रहा है। चीज़ किस तरह बढ़ती है, दर्जा ब दर्जा बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप करके, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, सूरह बकरा की आयत वो पढ़ चुके हैं हम लोग, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मे काफ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इस्लाम में दाखिल हो पूरे के पूरे, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। शैतान की कदमों की पैरवी नहीं करनी, क्योंकि शैतान के जो वसवसे, शैतान के जो हरबे या चाल होंगे वो स्टेप्स आफ्टर स्टेप होते हैं, वो कदम ब कदम होते हैं, एब्रप्ट नहीं होते, चेंजेस एकदम से नहीं आते। वो बहुत पहले मुझे याद है 90s ही के अंदर जब ये शुरू हुआ था इसका आना, तो एक गिफ्ट शॉप होया करती थी इस्लामाबाद के अंदर हारूनस, उसके अंदर सबसे पहली दफ़ा जो मेरी अपनी मेमोरी के अंदर है, वो मैंने पहली दफ़ा उस शॉप को देखा था जहाँ पे उन्होंने बाहर तक इसको सजाया हुआ था कि रेड कलर के बलून्स के साथ, वो बड़ा हाईलाइट हो रहा था। तो एक जनरल बात हुई थी कि वो देखो किस हद तक जा रहे हैं वो। लेकिन अब आहिस्ता से करके कितने साल गुजरे, यानी कि हम कोई 100 साल की बात तो नहीं कर रहे कि 100 साल में कितना काम बढ़ाया गया, 15 साल तकरीबन, 17 साल, इतने टाइम के अंदर आप देखें कि बिल्कुल फ्लिप हो जाए इस वक्त। अब बिलफर्ज़ इस टाइम, आज के दिन अगर कोई मार्केट के अंदर कोई लड़की नज़र आती है अगर रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसने कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली नहीं, वो तो खैर साहब मुझे भी कहते हैं देखा तुमने लाल रंग की सेंट्रो रखी हुई है, तो भाई मैंने तो पूरे साल रखी हुई है, एक दिन के लिए तो नहीं मैंने पेंट नहीं किया उसे। लेकिन अगर इस दिन अगर कोई अगर रेड कलर के ड्रेस से अपने जा रही है, तो पेरेंट्स को कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि वो किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। परल ये चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेडिली ग्रो करती जा रही है। अब क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया है कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करना, तो शैतान का जो मैंने जिक्र किया है, तो इसके अंदर क्या शैतानी चीज़ है? जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं जिनके बारे में ऑफकोर्स रिटन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, वो है ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन, बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। इनके अगर आप आइकॉन्स वगैरह देखेंगे या उनकी जो स्टैचूज पिक्चर्स होती हैं, वो कोई इतनी डिसेंट पिक्चर्स नहीं होती हैं। तो जो मुझे सिलेक्शन भी करनी पड़ी है, वो बहुत मुश्किल से जो डिसेंट चीज़ें उसकी हद तक मुझे रहना पड़ा है। एक फेस्टिवल होया करता था रोमन एम्पायर के अंदर, उस फेस्टिवल का नाम है लुपरकैलिया। लुपर ये जो वर्ड है एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, लुपर का मतलब होता है वुल्फ को कहते हैं, भेड़िए को कहते हैं। ये उनकी माइथोलॉजी के अंदर, रोमन माइथोलॉजी के अंदर उनके दो गॉड्स थे जिसकी मिल्किंग इस वुल्फ ने की थी, जिस तरह की इस पिक्चर इस आइकॉन के अंदर वाजे हो रहा है। और यही कॉन्सेप्ट रोमन से पहले जो दुनिया के ऊपर सुपर पावर थी ग्रीक्स, उनके अंदर भी होता था, जहाँ पे लुपर इनके गॉड का नाम है, उनके गॉड का नाम पैन होता था, PAN। तो लुपरकैलिया एक इवेंट मनाया जाता था रोमन एम्पायर के अंदर 15 फरवरी को मनाया जाता था। और ये सेलिब्रेशन या ये जो त्यौहार होता था, इसके अंदर क्या करते थे कि इसी गॉड के लिए एनिमल सेक्रीफाइस की जाती थी। एक रिलीजियस त्यौहार था उनका, क्योंकि उन्होंने जितना इतने ज़्यादा गॉड्स बनाए होते हैं तो पूरे साल के ऊपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उनके फेस्टिवल्स। अब रोमन एम्पायर, क्योंकि अगर आप मैप में देखें वो मिडिल ईस्ट, थोड़ा सा नॉर्थ अफ्रीका, ज़्यादातर वो यूरोप साइड के ऊपर था, उस एतबार से, उनके एतबार से जो उस वक्त होता होगा, इस तरह मौसम का चेंज होगा, जिस तरह अभी ग्लोबल वार्मिंग की थ्योरी है, जो भी उसकी बैकग्राउंड है, कितनी बात सही है कितनी गलत है, लेकिन एटलीस्ट वेदर का शिफ्ट जरूर है। अभी आप देखेंगे नवंबर का महीना भी जब होता है ना, तब तक हमें कोई स्वेटर वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पंखों की भी जरूरत पड़ रही होती है। तो इस तरह उस दौर में होता होगा, तब स्प्रिंग मनाया जाता था 15 फरवरी को, स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। और ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि आइसोलेटेड है, बहुत सारे कल्चर्स में इस तरह होता है। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर स्प्रिंग के सेलिब्रेशन किससे होती थी, बसंत से। जो बसंत है ये असल में क्या है, स्प्रिंग के आगाज का वेलकम होता है, बसंत मनाई जाती है। ये सेलिब्रेशन किया करते थे स्प्रिंग के आने की। और ये जो गॉड होता था, ये गॉड रिप्रेजेंट करता था फर्टिलिटी को, अगली नस्ल चल सके, क्रॉप्स की फर्टिलिटी भी और ह्यूमन नस्ल भी, इंसान की अगली नस्ल भी चल सके। तो उसके त्यौहार के लिए क्या करते थे कि डॉग्स एंड गोट्स, इनका सेक्रीफाइस होता था, कुत्तों और बकरियों के जो भी अपने हिसाब से ज़िबा करके, उसके गोश्त को और उसकी खालों को ना इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिंग्स बनाया करते थे, जिस तरह कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। उनके ब्लड लगे हुए गोश्त को और ब्लड लगे हुए स्ट्रिंग को इस तरह करके उनके यहाँ ये त्यौहार होता था। और फिर जो यंग लड़कियां होती थी उनकी नेकेड बॉडी के ऊपर उसको मारा जाता था। इस मारने को, ये जो स्ट्रिंग बनता था इसके मारने को वो बोला करते थे अपनी ज़ुबान के अंदर फेब्रुआ बोला करते थे, लैटिन का वर्ड है फेब्रुआटियो, उसके अंदर ये मारने को बोलते हैं। तो फेब्रुआटियो से असल में लफ्ज़ बना है फेब्री का, वो महीना जिस महीने में ये फेस्टिवल किया जाता है। फेब्रुआटो लैटिन का वर्ड है, जब वो इंग्लिश में बना तो वो फेब्री बन गया। तो रोमन ये बेसिकली जो डेज है, तब भी आपको जो जादू से रिलेटेड आयात थी और जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने बताया था कि ये जो जितने भी दिन हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सारे के सारे सन का डे ये है, सैटर्न का डे सैटरडे होता है, इस तरह करके पूरे वीक को डिवाइड किया हुआ उन्होंने। वो इस तरह लड़कियों की जो यंग गर्ल्स होती थी उनकी नेकेड बॉडी के ऊपर इस तरह मारा करते थे, ये सिंबलाइज करते हुए कि अब गॉड जो है ये इनके ऊपर ब्लेसिंग करेगा और ये ज़्यादा इस साल के अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी इनकी। फिर उसके हिसाब से वो कपल्स बनाया करते थे इस साल के लिए। ये उनका एक त्यौहार था जो चला आ रहा था फॉर ऑल टाइम्स। और ये जो कॉन्सेप्ट था, जिस आपको मैंने कंपैरिजन करके बताया कि ग्रीक गॉड भी एक इसी किस्म का ही था, पैन जिसके साथ पहले ग्रीक्स ये त्यौहार मनाया करते थे, तो एक इसकी पुरानी हिस्ट्री भी चली आ रही है। इसके अलावा वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी वैलेंटाइन की, कि वो एक छोटा बच्चा है जिसके विंग्स बने हुए हैं और उसके हाथ में वो एरो है और ये लव के जो जितने भी हैं उनके अंदर ये बनाया होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये मुझे बहुत ही मुश्किल से एक डिसेंट पिक्चर मिली है, वरना कोई डिसेंट पिक्चर थी ही नहीं इसकी। इनका एक गॉड है जिसका नाम है वीनस, फीमेल गॉडेस है बेसिकली, गॉडेस ऑफ लव इसको कहते हैं। ये उसका जो चाइल्ड है उसका नाम है क्यूबिट, CUPID, क्यूबिट। ये क्यूबिट है बेसिकली, ये जो हमें वैलेंटाइन के आइकॉन्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, वो क्यूबिट है असल में। एक बच्चा जिसके हाथ में एरो होता है, वो एरो बना हुआ है, ये बॉल क्रेविंग है ये, और वो विंग्स बने हुए हैं इसके। तो वीनस जो है वो गॉडेस ऑफ लव है, और वीनस की टेम्पल्स भी होती थी। ये जो प्लैनेट वीनस है ये सारा वो उनके पुराने रिलीजन के साथ उनकी एक इसकी एक वो कम बनता है, एक यूनियन बनता है। तो क्यूबिट के बारे में ये वो कहा करते थे कि जिसके ऊपर वीनस ने ब्लेसिंग करनी हो लव की, जिसके ऊपर जिस बंदे के ऊपर वीनस ने ब्लेसिंग करनी हो लव की, तो क्यूबिट क्या करता है कि उसको तीर मारता है, एरो मारता है। वो जो हार्ट का आइकॉन था ना, जो तीर लगा हुआ है, वो इनका इतना पुराना रिलीजन चला आ रहा है, इवन बिफोर क्रिश्चियनिटी, कम देखिए 2500 साल या ऐसे भी पुराना कॉन्सेप्ट ये चला आ रहा है। और जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि वो वाली जो उस दौर की हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिटर्न नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि कब शुरू हुआ था। पता नहीं 2500 या उससे भी पुराना अरसा होगा, क्योंकि रोमन एम्पायर का जो ट्रेन था वो बहुत बड़ा था, बड़े अरसे के लिए इन्होंने हुकूमत की थी पूरी दुनिया के ऊपर। तो बहरहाल ये वो आइकन था, यानी कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है कि जिसके ऊपर क्यूबिड ने बस तीर चला दिया ना, वो बस अब आशिक बन गया या मजनू बन गया या जो मर्जी बन गया, वो जिसके ऊपर क्यूबिड का तीर अगर लग गया, डीपली इन लव। उसके बाद 3rd century के अंदर 260s 270 तक एक किंग था रोमन एम्पायर का, क्लॉडियस द सेकेंड, रोमन एम्परर क्लॉडियस द सेकेंड। ये बहुत एम्बिशियस किस्म का एम्परर था, जिसके एम्बिशन उस दौर के अंदर एम्बिशन क्या होते थे, ज़्यादा ये होता था कि बस हमला करते जाओ पूरी दुनिया के ऊपर, जितनी जगह है उसके ऊपर फतह करते जाओ। और उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छी आर्मी चाहिए, बहुत डेडिकेटेड आर्मी चाहिए आपको, जिसके अंदर वन डायरेक्शनल होकर वो काम करते रहें। अब आर्मी के वो सोल्जर्स जो मेरिट थे, उनको जहरी बात है कि डिमांड होती थी कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ हैं, हमने वापस जाना है उनके पास, हमें आप ऑफ दें, इतने टाइम्स के लिए छोड़ें। इसको ये चीज़ जो है लगती थी कि ये एक न्यूसेंस है हमारे लिए, यानी कि एक वीकनेस की निशानी है, एक बंदे के लिए एक वीकनेस की निशानी है कि उसकी फैमिली हो और वो फिर उनका ख्याल भी रखना है उसने, और तो इसलिए बार बार उसको वापस आना पड़ रहा है। ये फजूल का ख़र्चा है, एक फजूल का एक रोटेशन हो रही है, और हर दौर के अंदर ये चलता आया। मुसलमानों के अंदर खिलाफत राशिदा के अंदर जब प्रॉपर सिस्टम हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बना था, तो उन्होंने ये किया था कि 4 मंथ का साइकिल बनाया होता था, और ये मेक श्योर करते थे कि कोई भी फौजी जो है, कोई भी सिपाही, वो 4 महीने से ज़्यादा बैटल फील्ड पर नहीं रहेगा। 4 महीने का अगर टाइम हो रहा है तो वो वापस अपने 4 महीने के अंदर अंदर वो वापस अपने घर ज़रूर विज़िट किया करें। एक फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है, हर लिहाज से वो एक अच्छी एक हेल्दी एक्सरसाइज होते थे। अब जाहिर बात है अगर रोटेशन हो रही है इस तरह की, किसी ने आना है जाना है, एक ख़र्चा है ना, स्टेट का ख़र्चा है, प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। अगर एक जगह नई मुहिम है, नई कंपेन है, वहाँ पर किसी को भेजना है, पता लगे कि उन हज़ार इतने हज़ार फौजियों में से 300-500 इन्होंने वापस आना है, उनकी जगह कोई और रिप्लेस करेगा। इसने बैन लगा दिया ऑल टुगेदर के जो सोल्जर्स हैं वो शादी नहीं कर सकते जब तक वो अंडर रोमन लीजेंस हैं, रोमन लीजेंस उनकी फ़ौज के नाम होते थे, जब तक वो अंडर रोमन लीजेंस हैं वो शादी नहीं कर सकते, इसने बैन लगाया हुआ था ये। अब ये 260-270 की मैं बात बता रहा हूँ, तो इस दौर के अंदर ऑफ कोर्स ये है क्रिश्चियन कैलेंडर के अतबार से, तो क्रिश्चियनिटी थी, एग्जिस्ट कर रही थी, और क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये वो वाली क्रिश्चियनिटी नहीं थी जो रोमन एम्पायर ने बाद में अडॉप्ट कर ली थी, कि जिसके अंदर उन्होंने ये अपना डॉक्ट्राइन बना लिया था कि जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, ये बात नहीं तब तक ये बात नहीं थी। तो वो क्रिश्चियनिटी जो थी वो इस्लाम ही था उस दौर का। तो उसमें एक पादरी कह लें जिसका नाम था वैलेंटाइन, वो था, और उस वो ये किया करता था कि इन सीक्रेट, ऑफिशियली बैन था इन सीक्रेट, अगर किसी सोल्जर ने एक शादी करनी है तो वो इन सीक्रेट उनकी शादी करवा दिया करता था, निकाह जैसा पढ़ते हैं उस तरह अपने हिसाब से वो इस तरह शादी करा दिया करता था वो इन सीक्रेट। इसका जब पता लगा था एम्परर क्लेडियस को II, तो उसने क्या किया कि उसको एग्जीक्यूट करवा दिया था, और एग्जीक्यूशन उसकी हुई थी ऑन 14th February 270 में ही एम्परर भी खुद भी मर गया था, इसका अपना जो टेन्योर था वो ख़त्म हुआ था 270 ही के अंदर। जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस के अंदर भी ऑफ कोर्स बड़े बड़े फ़िरके हैं, छोटे बड़े हर तरह के फ़िरके हैं, तो उनके अंदर जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसके अंदर इस बात का कन्फेशन है कि जो वैलेंटाइन जो सेंटहुड के अंदर जो हैं, जो उनके बड़े बड़े जो नेक लोग गुजरे हुए हैं, उनके अंदर एक ही ज़माने के अंदर एक नहीं बल्कि 3 वैलेंटाइंस गुजरे हुए हैं। एक तो स्टोरी ये है, एक तो लेजेंड ये है जो आपको बताया अभी, एक और ये है कि रोमन एम्पायर के अंदर ही जब रोमन एम्पायर पेगन था, बुद्ध परस्त था, तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती थी, उसको दबाया जाता था, तो उन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम था वैलेंटाइन, वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहा था, फैला रहा था। तो उसने बहुत सारे लोगों को जो देता था, और बहुत सारे लोग उसकी दावत के ऊपर क्रिश्चियंस हो रहे थे, उसको पनिश करने के लिए जेल में डाल दिया था, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया था कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वही जो जेलर था उसका, जो जेल का ओवरऑल कीपर था, उसकी अपनी बेटी थी जो ब्लाइंड थी, अंधी थी, उसको नज़र नहीं आता था, जूलिया नाम था उसका। इसने उसको क्योर किया था एक मिरेकल के ज़रिए, जिसको हम कहते नहीं जो बुज़ुर्गों की जिस तरह कहा जाता है बरकत होती हैं या करामात जो होती हैं, तो इस तरह मिरेकल के ज़रिए वो उसकी ब्लाइंडनेस ख़त्म हो गई थी, वो ठीक हो गई थी वो। और वो जो जेलर था वो और उसकी पूरी फैमिली जो थी वो क्रिश्चियन हो गई थी। बहरहाल इसको जब एग्जीक्यूट किया गया था उस लेजेंड के मुताबिक, तो वो 14 February था, और उससे एक दिन पहले उसने रात को उसी लड़की को, जूलिया को, एक लेटर लिखा था, उसके एंड में लिखा था उसने, सिग्नेचर्स अपने डाले थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। फिर इस तरह एक और भी लेजेंड है वैलेंटाइन से रिलेटेड, लेकिन वो बाद का है। तो पहले दो एक ही ज़माने के हैं, तीसरा जो है वो इधर है। तो क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर 3 लोग वैलेंटाइन इस डेट के साथ अटैच्ड हैं एग्जैक्टली। कुछ उनको खुद भी नहीं पता क्रिश्चियंस को कि ये इनमें से कब किसके साथ एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था। बाद में जब वो मैंने आप लोगों को जो हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल जो चल रही थी पिछले सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर भी जो मैंने बताया था कि इन्हीं रोमन्स के अंदर जब रोमन का डाउनफॉल आया था, इसके तकरीबन अंदाजन आप समझ लें कि 50 से 100 साल के बाद रोमन एम्पायर था वो क्रिश्चियन हो गया था, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया था अंडर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया तो पूरा स्टेट जो था रोमन एम्पायर जो पेगन था अब वो क्रिश्चियन हो गया था। जब क्रिश्चियन हो गया था अब जारी बात है वो जो पुराने जो उनके त्यौहार जो पेगनिज्म के होते थे वो उनको उन्होंने अबॉलिश करना था, ख़त्म करना था। तो उनको अबॉलिश ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर्स भी पास किए, सब कुछ किया, तो बाकी त्यौहार तो उनके विद टाइम दबते गए। क्रिश्चियनिटी के अंदर असल में एक अजीब सी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी ने दो तरह के अप्रोचेज अडॉप्ट की थी। कुछ चीज़ों को उन्होंने तलवार के जोर पे हल करने की कोशिश की, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसको उन्होंने क्रिश्चियनिटी का रंग दे दिया। जिस तरह फॉर इंस्टेंस हेलोवीन जो है, ये मैंने वही जो जादू से रिलेटेड जो लेक्चर्स थे उनके अंदर समझाया था कि हेलोवीन क्या होता था, कि उनका ख्याल ये होता था जो ऊपर नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज होती थी वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि अक्टूबर की जो आखिरी रात होती है 31 अक्टूबर, ये रात वो होती है जिस रात को जो ईवल स्पिरिट्स होते हैं, क्योंकि हेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो ईवल स्पिरिट दुनिया का विजिट करते हैं। वो जो होता है ना खौफनाक तस्वीरें बनाई होती हैं हेलोवीन में, उन्होंने पम्पकिन हो गया वो, या विच बनाई होगी, विच क्राफ्ट होगा, चुड़ैल, वो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरीके बैट्स बनाई होती हैं, चमगादड़े बनाई होती हैं। तो वो कहते उनका ख्याल ये होया करता था कि ईवल स्पिरिट्स रिविजिट करते हैं यहाँ पर। तो क्रिश्चियनिटी उसको ख़त्म नहीं कर सकी, तो क्रिश्चियनिटी ने उसको मोल्ड कर दिया इनटू अ डिफरेंट किस्म का फेस्टिवल। अब उसको ये नहीं समझा जाता कि ईवल स्पिरिट्स आते हैं, बल्कि अब वैसे एक इन्जॉयमेंट का हो गया कि कॉस्ट्यूम्स पहन के सब आएंगे और इस तरह करेंगे। तो क्रिश्चियनिटी ने बहुत सारे जो त्यौहार हैं उनके साथ इसी तरह किया है कि उनको क्रिश्चनाइज किया है। इस्लाम ने कभी इस तरह किया नहीं था, इस्लाम की इब्तिदा का जो जितने भी 100 चंद साल थे उसके अंदर कभी इस तरह नहीं हुआ था कि उन्होंने लोकल कल्चर की चीज़ों को लोगों को माइल करने के लिए उनकी चंद चीज़ें अडॉप्ट कर ली। तो इसीलिए जो अर्ली इस्लाम के अंदर गलतियाँ ऐसे पे नहीं हुई थी, बाद के इस्लाम के अंदर इस तरह की गलतियाँ हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो इस्लाम फैला है वो बुज़ुर्गों के थ्रू फैला है, अल्लाह ताला के जो नेक लोग थे उनके थ्रू फैला था। अब उन्होंने उनमें से, अब एग्जैक्टली ये भी नहीं कोई बहुत प्रिसाइसली पता, लेकिन उनमें से कुछ ने माइल करने के लिए हिंदुओं को, जिनके यहाँ म्यूज़िक पार्ट ऑफ रिलीजन होता था, या आप अगर इंडियन मूवीज़ भी देखें तो जब भी वो अपना कर रहे होंगे मंदिर में होंगे तो म्यूज़िक होता है उसके साथ, वो गा रहे होते हैं उसे, तो उसको माइल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने उसको अल्टरनेट दिया था जिसको कवाली बना दिया गया था। अब वो कवाली बिल्कुल ही और किस्म की शक्ल बन गई है, उसके अंदर 100% म्यूज़िक भी है, कब्रों के ऊपर कवालियाँ गाई जा रही हैं, जो कवालियाँ गाने वाले वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहे होते, बस इसी तरह ही चल रहा है, एक बिल्कुल ही अलग किस्म की चीज़ बन गई है। और जब BBC या वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं साउथ एशिया के इस्लाम के ऊपर तो वो मज़ार भी दिखा रहे होंगे, कवालियाँ दिखा रहे होंगे, विच हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, इसका ताल्लुक है ही नहीं हमारे साथ, हमारे असल के साथ। लेकिन ये लोकल एक माइल करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे जो भी थे अल्लाह ताला के नेक लोग उनमें से किसी ने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की होगी कि जो पहले आप भजन गाया करते थे अपने खुदाओं के लिए, भगवानों के लिए, अब उसकी जगह आप कवाली गा लें जिसके अंदर हमद होगी और नात होगी। और अर्ली कवाली के अंदर म्यूज़िक शामिल नहीं था, अब बिल्कुल उसकी और ही शक्ल बन गई है, बहाल भी पढ़ रहे होते हैं और उसके ऊपर वो धमाल भी किया जा रहा है, बिल्कुल वो चीज़ें जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं सिरे से। तो बहरहाल क्रिश्चियनिटी ने भी इसी तरह ही किया था, इसी किस्म के स्टेप्स किए थे। जब क्रिश्चियन हो गया था ये दौर तो उन्होंने पहले ऑफिशियल ऑर्डर दिया, सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये जो त्यौहार था जो 15 फरवरी को मनाया जाता था लुपरकेलिया, ये ख़त्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लस्टफुल डिज़ायर शामिल थे, यंग लड़कियों के साथ वो जो करते थे और उसके बाद यंग लड़कों में से उन्हीं के साथ कपल्स बना दिया करते थे, तो ये त्यौहार जो था ये चीज़ ख़त्म हो नहीं रही थी। तो फिर उस वक्त 469 में पोप था ग्लेसियस, उसने एक ऑफिशियल ऑर्डर पास किया कि 15 को ये होता था, उसने 14 फरवरी को उस फेस्टिवल को रिप्लेस करने के लिए क्या कर दिया, 14 फरवरी को जो हमारे नेक गुजर चुके हैं सेंट वैलेंटाइन उनका डे बनाया जाएगा। इनके और भी होते हैं, जिस तरह कुछ इनके यहाँ जो सेंटहुड है वो उसे कहते हैं सेंटहुड, इसे कहते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नेक लोगों में उनके क्रिश्चियंस के मुताबिक जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल हासिल कर चुके होते हैं उनको वो सेंट्स बोलते हैं, और उन्हीं के मकबरे भी होते हैं, उनके मज़ार भी होते हैं। जिस तरह ये जो जहाँ पे पोप रहता है उसका नाम है सेंट पीटर स्क्वायर, ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से थे, उनको उन्होंने सेंटहुड कर दे दिया। फिर रशिया के अंदर जो जब भी खबर आती है तो सेंट पीटरबर्ग के अंदर ये हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने कोई इनका मरा हुआ दफन होया हुआ है। इसी तरह ही इनके त्यौहार और भी होते हैं। सूरह बकरा की जो आयात है जिनके अंदर जिब्राइल और मीकाइल का जिक्र आता है, उसके अंदर मैंने समझाया था जो मीकाइल जिन्हें हम कहते हैं फरिश्ते जो हैं उनको ये माइकल बोलते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने सेंटहुड बनाया हुआ है। सेंट माइकल्स, सेंट माइकल्स हम किसे कहते हैं, हम तो एक शर्ट्स के ब्रांड को कहते हैं सेंट माइकल्स है, तो असल में सेंट माइकल्स वो अपने उस सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं लव। तो इस तरह ही सेंट वैलेंटाइन, तो इसको असल नाम इसका कंप्लीट नाम क्या है, सेंट वैलेंटाइंस डे है। इस दिन को 14 फरवरी को मनाया जाएगा, ये उसने ऑर्डर पास कर दिया ताकि रिप्लेस किया जाए सम हाउ उस 15 फरवरी वाले फेस्टिवल को जो तब मनाया जाता है कि वो पेगन है, तो उसके साथ ही इसको जोड़ दिया है, तो किस तरह से लोग इसको भूलते जाएंगे। अब रोमन्स जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एज पॉलिटिकल हिकमत अमली अडॉप्ट किया था, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंक्लिनेशंस कि हमारा बहुत दिल माइल हो गया इस तरफ, हमारा दिल खुल गया इस हदायत की तरफ, उन्होंने पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया था क्योंकि क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, तो उन्होंने कहा था रोमन एम्पायर की जो पावर जो गिर रही है वो दोबारा चढ़ सकती है अगर हम क्रिश्चियनिटी का सहारा पकड़ लें, फॉर पॉलिटिकल रीजंस उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब उससे ये नहीं हुआ था कि रोमन एम्पायर बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार, उस तरह का मामला नहीं था इनके अंदर। अब रोमन एम्पायर जहाँ जहाँ जाता रहा उन्होंने अपने हिसाब से जो दिन होते थे वो सेलिब्रेट करने शुरू किए। जब फ्रांस को कॉन्कर किया था रोमन्स ने, तो वहाँ पर उन्होंने एक कस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जब वैलेंटाइन का डे आया तो उन्होंने इसको पुराने अपने उसके साथ रिलेट इस तरह किया कि इन्होंने उस जगह के अंदर उस बस्ती के अंदर जितने भी लड़कियाँ हैं यंग लड़कियाँ उन सब के नाम पर्चियों पर लिखे और एक पॉट सा जो था उसके अंदर डाल दिए थे मिक्सअप करके, जैसे लॉटरी नहीं निकलती बिल्कुल उस तरह ही, और उसके अंदर ये होता था कि बारी बारी उनमें से आके जो बंदे होते थे लड़के होते थे वो आके निकालते थे जिसके नाम जो पर्ची आती थी वो उसका उस दिन रात के लिए वैलेंटाइन होता था, उसने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरह के जो त्यौहार थे वो जो पहले जो बात चली आ रही थी वो एक और तरीके से कंटिन्यू रही, जिसको हालांकि पोप ने सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो लस्टफुल डिज़ायर्स के साथ था, शैवानी ख्वाहिशात के साथ उसका ताल्लुक था, इसलिए वो सप्रेस नहीं हो सका, उस तरह ख़त्म नहीं हो सका उसको। अब जारी बात, अब आपने ये तो कह दिया कि सेंट वैलेंटाइन का डे मनाएंगे, अब करना है कि अभी उस दिन हमने, तो इसलिए वो उन्होंने उसको उसी डायरेक्शन में दोबारा ले गए। इस तरह ही पॉट्स होते थे और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत जल्दी फैला, जिस तरह जब मीडिया ओपन हुआ है तो ये वैलेंटाइन का कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी फैला पाकिस्तान इंडिया और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में, दुबई और इन तमाम कंट्रीज़ में किस तरह तेज़ी के साथ फैला ये कॉन्सेप्ट, मूवीज़ के अंदर कितना जिक्र आ रहा था, जबकि ये पहले ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि ये बात है कि जो फहाशी जो है जहाँ पर वल्गैरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर एकदम से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो जाती है, एकदम से लोग जो है उसको अडॉप्ट बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। इस तरह यूरोप के बहुत सारी जगहों पर और भी हुआ, इटली के अंदर भी फैला, जर्मनी, यूके, इन तमाम जगहों के ऊपर ये फैलना शुरू हुआ। अलबत्ता विद टाइम ओवर द ईयर्स इसके थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हुए थे। प्रॉब्लम्स क्या आने शुरू हुए थे, जारी बात अगर इस तरह की हरकतें हो रही होंगी तो लड़ाई झगड़े भी होंगे कि नहीं होंगे। अब वो जो भी लड़की थी उसने बाद में किसी के साथ तो जाके शादी करनी है ना, वो जो लड़का था उसने किसी के साथ तो बाद में शादी करनी है, उनमें से पता नहीं कौन किसके रिलेटिव होंगे, वो जो लड़कियां जिनका नाम डाला गया होता उसमें से कौन किसका रिलेटिव होगा, उसको कोई गुस्सा भी चढ़ा होगा, कोई लड़ाई भी हुई होगी, कत्लो गारत, इस तरह के क्राइम्स ही बढ़ने शुरू हुए, जो एक अननेचुरल तरीका था। यानी कि जो सारा कॉन्सेप्ट है, जिस मर्जी रिलीजन की बात करें, जो सारा कॉन्सेप्ट शादी का है उसको बिल्कुल ही उसको मिट्टी पलीद करने वाली बात है इस तरह की चीज़ें डाल के। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई थी तो इसको फिर दबाया गया था, ख़त्म करने की कोशिश की गई थी कि इसको हमने ख़त्म करना है इस त्यौहार को, यानी कि इसकी वजह से बहुत ईवल फैल गया है, इसको ख़त्म किया गया, ऑफिशियली हर जगह सप्रेस किया गया। अनऑफिशियली बातें चलती रहती हैं लेकिन ऑफिशियली इसको हर जगह से उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की कि अब ये बात आगे ना बढ़े। यूरोप के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी होता था, जो आइकॉन्स की बात कर रहा था, यूरोप के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी होता था कि फरवरी के महीने को ही वो ये समझा करते थे कि ये अपने, तब जारी बात तब साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी, तब वो ये समझा करते थे कि ये बर्ड्स का मेटिंग सीज़न होता है, ये फरवरी का मंथ जो है मिड फरवरी ये बर्ड्स का मेटिंग सीज़न है। तो वो कॉन्सेप्ट भी जब इसको सेलिब्रेट किया जाता था तो उसके आइकॉन्स के अंदर आना शुरू हुआ था। ये जो बर्ड्स का कॉन्सेप्ट था ना जो मैंने आइकॉन्स के अंदर दिखाया था कि परिंदे आए हो, ये वहाँ से आता था कि ये मेटिंग सीज़न है, बर्ड्स का मेटिंग सीज़न है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था आना। बहरहाल इसको सप्रेस रहा ये बीच में काफ़ी साल तक, ऑफिशियली सप्रेस अनऑफिशियली थ्रू आउट चलता रहा ये। फिर इंग्लैंड के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहे थे. इंग्लैंड का जो किंग था चार्ल्स सेकंड, वो एग्जाइल में था. नीदरलैंड्स उसको एग्जाइल किया हुआ था. डच के साथ उसकी जंग चल रही थी. 1660 के अंदर वो सक्सेसफुली जब वापस आया यहाँ पर, तो उसने आके जिस साल वो आया था वापस थ्रोन के ऊपर, उसी साल उसने अनाउंस कर दिया कि वैलेंटाइन डे को पब्लिकली ऑफिशियली सपोर्ट करेंगे और सेलिब्रेट किया जाएगा. तो वही कॉन्सेप्ट दोबारा आना शुरू हुआ. उसने इसको यूज़ किया था एज ए पॉलिटिकल गेम के लोगों के अंदर एकदम से मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, कि जी रोशन ख्याल किस्म का बंदा आया है, तो हमारे जज्बात का बड़ा एहसास है इसे. तो 1660 के अंदर जब उसने इसको इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया. उस जब सेलिब्रेट किया जाता था तो ऑफकोर्स उसको भी सेलिब्रेशन में शामिल रखा जाता था. तो इंग्लैंड वो पहली सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी बनी, क्योंकि ये रोमन्स उस दौर के अंदर इंग्लैंड का मुल्क था नहीं. तो इंग्लैंड का मुल्क बाद में जाके आया था, उस दौर में नहीं था. तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर इंग्लैंड वो पहला मुल्क बना जिसने इसको फैलाना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया. अब इंग्लैंड की जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट फैला. अमेरिका के अंदर, जो कि अमेरिका तो खैर 1776 में जाके आज़ाद हुआ था, लेकिन अमेरिका के अंदर ये वैलेंटाइन का कॉन्सेप्ट और ये जो सब चीज़ें थी ये आई थी 1629 के अंदर. लेकिन एक्चुअली जो फैलनी शुरू हुई थी या जो जो पॉपुलैरिटी हासिल की थी वो तकरीबन 100 ईयर्स के बाद थी. 18 सेंचुरी के अंदर जाके ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अमेरिका के अंदर भी. अलबत्ता 19 सेंचुरी के अंदर, यानी कि 150 साल इस टाइम के अंदर आप देखें, वहाँ पे ये होना शुरू हुआ था कि अमेरिका के अंदर एक बिजनेसमैन था, उसने वैलेंटाइन डे के ऊपर ये कार्ड्स का, उसने इंग्लैंड से आइडिया लिया कि इंग्लैंड के अंदर कार्ड्स इस तरह यूज़ होते हैं, इस डे के ऊपर कार्ड्स दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं. उसने इस बिज़नेस आइडिया को अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस किया और उस दौर के अंदर 19 सेंचुरी के अंदर उसने इस एक दिन में उसने $5,000 कमाए थे. तो यहाँ से उसने एक आइडिया पिक कर लिया कि ये तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो बहुत बड़ा बिज़नेस है ये, तो क्यों ना मैं इसको यूज़ करूँ. वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट पुराना चला आ रहा था पेगन और वो चीज़ें जो सारे जो सेक्सुअल डिज़ायर से इसका ताल्लुक था, यहाँ पर जाके उसने एक उसकी इकोनॉमिक रंग इख्तियार किया कि क्यों ना इसके ऊपर बिज़नेस किया जाए, सेल्स होंगी हमारी, सेल्स बढ़ेंगी. और जारी बात है कि जो इस तरह का कॉन्सेप्ट था ये फैला तो है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर. अब आप ये देखें ना कि आम डेज के अंदर का केक कब लिया जाएगा, बर्थडेज के ऊपर हो गया केक, लेकिन वो कितने केक लिए जाएंगे, बस जिस बंदे की बर्थडे वही उसी के लिए होगा ना. अगर एक सिटी के अंदर बिलफर्ज 1,000 बंदे की आज उस दिन बर्थडे बनती है, 5,000 बंदे की बर्थडे बनती है, तो 5,000 के करीब केक होंगे, वो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर. हर बंदे से किस तरह कैश लिया जाए, उसके लिए कोई बड़ा इवेंट होना ज़रूरी है. अमेरिकन और यूरोपियन सोसाइटी के अंदर आप देखिए, उन्होंने हर महीने के अंदर ना एक इवेंट बनाया होता है. थैंक्स गिविंग डे होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, हेलोवीन होगा, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर होगा, ईस्टर होगा, वैलेंटाइन डे होगा. तो इस तरह उन्होंने हर महीने में डे बनाए होते हैं. वो दिन कम पड़ने शुरू हो गए तो अब कौन से दिन आ गए हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, जो कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता, टीचर्स डे, तो इस तरह के जिन्हें डे बनाने शुरू कर दिए. आइडिया ज़्यादा पसंद आया तो यूएन इन लोगों ने भी बोल दिया हैंड वॉशिंग डे, आज हाथ धोएंगे सब लोग, आज मुंह धोएंगे, आज नहाया करेंगे सारे. तो इस तरह करके एक एक दिन बनाना शुरू कर दिया कि आज फलानी चीज़ का दिन है. तो ज़्यादा अजीब बात यह है कि गालिबन जमात इस्लामी ने या किसी एक ने स्टार्ट किया था, बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है जमात इस्लामी, इसको करता है सपोर्ट. ये वो होता है हिजाब डे होता है, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हिजाब डे भी एक होता है. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स इस्लाम के अंदर नहीं है. इस्लाम के अंदर कोई एक दिन नहीं होता कि आपने आज के दिन तो अम्मी को कार्ड देना है, आगे पीछे आपने जाना फूटे मुंह नहीं पूछना अम्मी से कि आपके तो बेट ठीक है, सर दबा दूँ आपका या कुछ और, वो कभी नहीं आपने केयर करनी, ना अबू का क्यों केयर करनी है, और बहन भाई का तो क्या करना है, क्या मुसीबत पड़ी है बहन भाई को लिफ्ट कराने की. इतने वैलेंटाइन डे के ऊपर ज़रूर अलबत्ता जाना बड़ा ख्याल होता है, बाकी तो ना तारीख़ याद है ना कुछ और याद है. बल गोरे मनाते रहे हैंड वॉशिंग डे है या उसके ऊपर वॉक हुई तो होती रही, वॉक होते रहे, हम क्या करें. तो इसी तरह ये इस्लाम के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिजाब डे तो बस एक दिन हिजाब का डे होगा, बाकी दिन जाना मौजे करो, बस एक दिन जाना वो हिजाब होगा, या जितने भी एक दिन के कॉन्सेप्ट हैं ये इस्लाम के बातों के बिल्कुल अपोजिट हैं, ये इस्लाम की टॉपिक्स के बिल्कुल अपोजिट हैं. तो अभी ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि 2013 जो पिछले साल जो गुजर चुके हैं वैलेंटाइन, अभी जाहिर बात है इस साल का तो बाद में आएगा, उसके डेटा के मुताबिक अमेरिका के अंदर एक फेडरेशन है, नेशनल रिटेल फेडरेशन NRF, इनकी वेबसाइट के ऊपर डाटा आता रहता है कि किस चीज़ के ऊपर कितना बिजनेस हुआ है। तो सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, बाकी दुनिया के अंदर तो कितना होगा। सिर्फ वैलेंटाइन डे के ऊपर शॉपिंग में 18.6 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे, 18.6 अरब डॉलर, 18.6 अरब डॉलर। 0.9 बिलियन पाकिस्तान को कल या परसों मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ी सेलिब्रेशन हुई है कि हमने इस गवर्नमेंट ने बड़ा उसको कर रही है कि हमने अपने डाटा से बड़ा इंप्रेस किया है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आपको 0.9 बिलियन मिला है, 18.6 बिलियन का इस दिन पिछले साल बिजनेस हुआ था अमेरिका के अंदर, जिसमें से एवरेज $131 पर शॉपकीपर ने स्पेंड किया था। हम अपने हिसाब से देखें समझ लें कि 13,000 रुपये पर बंदा खर्च कर रहा है। 1.6 बिलियन जो है वो कैंडीज़ के ऊपर खर्च हुआ था, 1.9 बिलियन फ्लावर्स के ऊपर खर्च हुआ था और 4.4 बिलियन ज्वेलरी के ऊपर खर्च हुआ था। अब इतना ज़्यादा अगर इसके साथ इकोनॉमिक्स शामिल है, ठीक है, तो फिर एडवर्टीजमेंट ये किस तरह की जाएगी? भाई आपको जो पसंद है ना, बस दिल की बात कह दो आज उसे, बस जो है ना दिल, बस दिल में कोई बात रहे ना आपके, बस उसको कह दो आज, क्योंकि उसको कहना है आपने तो उसके ज़रिए आपको कोई चीज़ देनी पड़ेगी ना, कार्ड देना पड़ेगा, कोई कैंडी, कोई चॉकलेट के डब्बे, चाहे आपको खुद नहीं पसंद, आपको आप चॉकलेट का डब्बा उसको महंगा से महंगा इंपोर्टेड ला के देंगे, कोई गिफ्ट देंगे इस तरह का। अच्छा एक टेडी बेयर भी होता है, लेकिन टेडी बेयर का ताल्लुक जो है ना असल में वो ज़्यादा पुराना नहीं है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था थियोडोर रूज़वेल्ट, पिछली सदी के शुरू के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसका निक नेम टेडी था असल में। तो उसका एक हंटिंग का वाक़या था, शिकार का एक वाक़या था, तो बेर के साथ एक हुआ था, उसके बाद से ये उसका एक बन गया था टेडी बेर का, ये लफ्ज़ ही टेडी बेर वहाँ से शुरू हुआ था। तो बाकी जो आइकॉन्स जितने भी हैं, आपको बता दिया कि वो जो आइकॉन था लव का जो तीर वाला, और वो जो बच्चा नंगा बच्चा कौन सा होता है, वो क्यूबिट होता है, वो गॉड है उनका, जो उनका गॉड है, जिसके ऊपर वीनस ने लव को डालना हो, वो उसके ज़रिए अपने बच्चे के ज़रिए वो बेड़ा गर्क करते हैं उस बंदे का, ठीक है, और वो फिर बेचारा भटकता फिरता आशिक बन जाता है। बर्ड्स का बता दिया, मेटिंग सीजन के उसका ताल्लुक होता है, तो मेटिंग जब वो चला आ रहा था उन लोगों का। तो ये आजकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं, क्योंकि इसके अंदर वल्गैरिटी है, इसके अंदर हर बंदे को दिल के अंदर पता है कि हाँ ये शरीफ़ नफ्स वाली बातें नहीं है ये, ठीक है, ये अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाली बातें ये नहीं है। ये बंदे को, हर बंदे को दिल के अंदर बात अच्छी तरह पता है, वैलेंटाइन डे जो है वो कोई नेकी का दिन नहीं है, कोई खैर का दिन नहीं है ये, इसके अंदर अगर जो कुछ भी होगा वो गलत सेंस के अंदर ही होगा। और जो लोग डिफेंड करना चाहते हैं वो कह तो देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई वैलेंटाइन आप क्यों गलत सेंस में इस्तेमाल करते हैं, आप वैलेंटाइन ज़रूरी तो नहीं है कि आप उस सेंस में आप गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के सेंस में लें, आप इस तरह भी तो ले सकते हैं उसे कि आप अपनी अम्मी को कह रहे हैं, अपने अबू को कह रहे हैं, आप बहन भाई को कह रहे हैं। कोई पागल होगा जो अपनी अम्मी अबू को जाके वैलेंटाइन कहेगा? पागल होगा? कुछ चॉकलेट का डब्बा अम्मी अबू के लिए लेगा कभी? अभी बस फसूल जाना आर्ग्यूमेंट बनाए होते उन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस कॉन्सेप्ट को फैलाने के लिए है। और बिल फर्ज उनकी आर्ग्यूमेंट ले भी ली जाए कि यार ठीक है वैलेंटाइन, जिस तरह वैलेंटाइन के कार्ड्स क्या होंगे, या इवन बच्चे भी जो बीकन हाउस और ऐसे स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो आज जब घर आएंगे तो अपने अम्मी अबू को कौन सा कार्ड देंगे, बी माई वैलेंटाइन और या योर वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया करते थे, जो ये पॉपुलर होना शुरू हुआ था वैलेंटाइन का लफ्ज़, वो हुआ था वही जो मैं बताता हूँ, जो पर्ची होती थी वो होता था उसे कहते थे, वो एक नाइट एक दिन एक रात का वैलेंटाइन होता था। वो कहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, वो किस कहते वल्गर सेंस में इस्तेमाल होता था, हैवानी ख्वाहिशात के ऊपर। अपनी अम्मी अबू के साथ आप उस लफ्ज़ को किस तरह अफिलिएट कर सकते हैं, इसकी क्या सेंस बनती है? बहरहाल जो भी दिल में है आज बस कह दो उसे, अगर उसने दिल तोड़ दिया तो खैर हमारी तो चीज़ बिकी गई थी। हाँ ये भी हो सकता है कि जब आपका दिल बहुत टूट गया ना तो आप घर जाते हुए एक सैड सॉन्ग की सीडी लेके जाएंगे आप और फिर वो सुनते रहेंगे कि मेरे साथ होया क्या है ये। तो इस बात को कंक्लूड करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू दाऊद की हदीस 4031। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिस शख्स ने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की, उसका रंग को अडॉप्ट करने की कोशिश की, उसके कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश की, उसके तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने की कोशिश की, फहुआ मिन हम, तो वो बस उसमें शुमार किया जाएगा, उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है, वो फिर उसमें शुमार समझा जाए। जिसको इन चीज़ों के अंदर अट्रैक्शन नज़र आ रही है, उसको इस्लाम में अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, वो फिर अपने आप को उधर ही समझे। और ऑफ कोर्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि वो उनमें शामिल है, हमें शामिल नहीं है, तो क्या तवक्को की जा सकती है कि उस शख्स की शफात होने वाली है क़यामत वाले दिन पर, क्या तवक्को कर सकता है? इसके बारे में पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जो कोई जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में शुमार समझा जाएगा, उसका हम मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? नंबर वन, वैलेंटाइन डे ना मनाना, ठीक है, पैसा भी खर्च ना करना, और एक तो पैसा भी बर्बाद होगा, ज़्यादा चांसेस यही है कि आगे से नो ही मिलना है आपको। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के एंड पे ज़्यादा नाराज़गी होगी। आप लोग जो है दूसरा काम क्या कर सकते हैं वो ये है कि ये जो मैं आपको बात बताई है, होपफुली ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी पहले, आप लोगों को ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा ये बात तो पता होगा कि हाँ इसका ताल्लुक किसी वल्गैरिटी किसी चीज़ से होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये कि इसका ताल्लुक दो पुराने मज़हबों के साथ है। हम कभी होली मना सकते हैं मुसलमान होते हुए, हम कभी दिवाली मना सकते हैं, हम क्रिसमस मना सकते हैं, हम ईस्टर मना सकते हैं, तो इसी तरह ही हम ये जो इनका त्यौहार हैं जो ग्रीक और रोमन रिलीजन्स के हैं, हम ये भी नहीं मना सकते हैं। और उसी को बेशक क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश की सेंट वैलेंटाइन डे से, वो भी क्रिश्चियन त्यौहार है, हम वो भी नहीं मना सकते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।